आस्था ने मुस्कुराते हुए थोड़ी और इधर उधर की बातें की और फिर सब लोग एक साथ वहां से विदा ले लिए। बाहर निकलते ही सभी लड़कियां एकदम से गहरी गहरी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी थीं। तब मारिया ने सभी लड़कियों को देखकर बोली थी, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना किसी ने, तुम लोगों को कुछ कहा तो नहीं था? लेकिन फिलहाल सभी ने कहा था सब अच्छे से हो गया, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जल्दी से सभी लड़कियां बोली थीं कि हमें फटाफट अभी घर के लिए निकलना चाहिए और घर से थोड़ी सी दूरी पर पहले ही एक काम करेंगे, हम लोग सीधे रघुवंशी मेंशन चले जाएंगे, वहीं जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेंगे क्योंकि इस वक्त यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी हमें काफ़ी देर हो चुकी है और पता नहीं घर पर आहन बच्चों को कैसे संभाल रहा होगा, वैसे भी नानी माँ भी घर पर नहीं है। जल्दी ही मारिया और रौनक ने बच्चों का कंसर्न जताया था और सभी लोग वहां से निकल गए। कहीं न कहीं रास्ते में सभी आस्था की एक्टिंग को लेकर उसे दाद दे रहे थे। तभी आस्था नफरत से बोली थी, देखा तुम लोगों ने, उसने पहली मीटिंग में ही हमें अपने डाक विला में बुला लिया है, अब देखना अब हम उसके साथ वहां जाकर क्या करेंगे। कहीं न कहीं आस्था दाँत भींचते हुए बोली थी। तभी एंजल बोली थी, वैसे आस्था मानना पड़ेगा, तुमने अपने गुस्से और नफरत को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, रियली। और फिर देर न करते हुए अब सब लोग वहां से निकल गए थे। वहीं दूसरी ओर मेंशन में सब लड़कियों के जाने के बाद टाइगर और आहन दोनों ही एक साथ हॉल में अपने अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए थे। इतना ही नहीं, दादाजी और अभिमान जी, वसुंधरा, ये सब भी अंश के साथ वहां मौजूद थे, क्योंकि आस्था ने बहुत ही कम शब्दों में दादाजी को बता दिया था कि वो किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रही है तो बच्चों का ध्यान रखना होगा। अब तक टाइगर और आहन दोनों की हालत खराब हो रखी थी क्योंकि बच्चों को कब भूख लग रही थी और कब उन्हें सुसु पॉटी आ रही थी इसका उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा था। टाइगर अपने बच्चे का डायपर बदलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था कि इस तरीके से भला वो बच्चे का डायपर कैसे चेंज कर सकता है। वहीं आहन अब टाइगर को देखकर बोला, अरे टाइगर भैया, अब क्या हो गया, अब डायपर क्यों नहीं बदल रहे बच्चे का? अगर उसे सूसू से कपड़े गीले हो गए तो उसे ठंड लग सकती है, नानी माँ ने मुझे समझाया था। आप एक काम कीजिए, जैसे मैं प्रिंसेस को डायपर पहनाऊंगा आप भी इस तरीके से डेविड को डायपर पहनाइए। रुकिए, देखिए, ये बोलकर आहन टाइगर को गाइड करने लगा था कि उसे किस तरीके से अपने बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए। वहीं जैसे ही टाइगर ने आहन के मुंह से बच्चे का नाम डेविड सुना तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था, लेकिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए वो उसे पहनाने की कोशिश करने लगा था। मगर अब टाइगर को डेविड नाम से बेहद नफरत और गुस्सा था। वो इसके रिगार्डिंग मारिया से बात करना चाहता था लेकिन मारिया ने अब तक उससे सीधे कोई बात नहीं की थी। वो सोच रहा था कि आखिरकार उसकी बीवी किस बात से नाराज़ हो सकती थी। तभी तक वसुंधरा जी बच्चों के फीडर बनाकर ले आई थी और तीनों बच्चों को उसने फीडर से फीड करना शुरू कर दिया था। वहीं आहन भी वसुंधरा को इस तरह बच्चों की केयर करते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि ये औरत इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि मैं इसे समझता था, थोड़ी बहुत तो शायद इसमें इंसानियत बाकी है, कहीं ना कहीं वो यही सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर अब जैसे ही संजना ने थोड़ी सी वीर की खबर ली तो उसे इस बात का पता चल चुका था कि वसुंधरा और वीर अब पूरी तरह से अरमान के साथ रह रहे हैं। उसने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी करना पड़े वसुंधरा और वीर से तो वो बदला लेकर रहेगी और उन्हें उनकी औकात याद दिलाएगी। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मुझे धोखा देकर आ जाने की? वो खुद से बोली, नहीं, सारी गलती उन्हीं दोनों की है। अगर वो वसुंधरा आस्था पर अटैक के प्लान के बारे में अरमान को नहीं बताती तो अरमान को कुछ भी पता नहीं चलता। उसने ठान लिया कि वो अब वसुंधरा को ही सही तरीके से फंसाएगी, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, और इसके लिए उसे एक रास्ता भी मिल चुका था। अब जल्दी ही संजना कहीं और नहीं बल्कि एक अस्पताल के ठीक सामने खड़ी हुई थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि इस अस्पताल के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसे अरमान ने अपने हाथों से सजा दी थी, लेकिन जिसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी अरमान की सजा की वजह से, लेकिन वो बदकिस्मती से बच गया था और अब वक्त था संजना की उस कोशिश को इस्तेमाल करने का। कुछ सोचकर संजना हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी। वहीं दूसरी ओर सारी लड़कियां फटाफट रघुवंशी मेंशन जा पहुंची थीं और वहां जाकर उन्होंने अपने अपने कपड़े बदले, अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ किया और पूरी तरह से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली थीं, अब इस बारे में हम लोग कोई डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट पहले घर के अंदर चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और अगर अरमान जी ने हमें खोजना शुरू कर दिया तो वो पूरे शहर को एक कर देंगे और हमें खोज कर ही रहेंगे, फटाफट चलते हैं। ये सोचकर सभी लड़कियाँ जल्दी जल्दी मेंशन की ओर जाने लगी थीं, लेकिन इससे पहले कि वे मेंशन जा पाती सभी लड़कियों के ठीक सामने अरमान की बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई थी। अब अचानक से अरमान को सामने देखकर आस्था और बाकी लड़कियां चौंक गई थीं, लेकिन तुरंत ही अरमान गाड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे की सख्ती साफ बता रही थी कि इस वक्त वो कितने ज्यादा गुस्से और नफरत में है। अरमान ने वहां जाकर किसी से कुछ नहीं कहा, केवल अंदर चला गया। जैसे ही सबने ये देखा कि अरमान अंदर चला गया है सभी लड़कियों ने राहत की सांस ली और फटाफट अंदर जाने लगी थी। और जैसे ही वे लोग अंदर गए और अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने हॉल का दृश्य देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि इस वक्त हॉल में टाइगर अपने बच्चे को लेकर जूझ रहा था। वो उसे गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रहा था। वही हाल आहान का भी था, लेकिन माँ की गोद तो आखिरकार माँ की ही होती है, तो दोनों ही बच्चे रो रोकर पूरा घर सिर पर उठाए हुए थे। ये देखकर मारिया और रौनक दोनों तड़प से गए थे। फटाफट आगे बढ़कर उन्होंने अपने अपने बच्चे को गोद में ले लिया था। वहीं मारिया ने टाइगर को घूरते हुए कहा, आप क्या कर रहे थे? क्या कोई छोटे बच्चों को इस तरह से ट्रीट करता है, इस तरह से संभालता है? वो छोटा बच्चा है, बहुत कोमल है, उसे इस तरीके से नहीं पकड़ते। क्या आपको इतना भी नहीं पता? आज पहली बार मारिया ने थोड़ी सी तेज आवाज में टाइगर को डांटा था। टाइगर बेचारा सा मुंह बनाकर रह गया था। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाया और सीधा वहां से कमरे में चला गया। वहीं रौनक अभी केवल आहान को घूर घूर कर देख रही थी। उसने उसके हाथ से प्रिंसेस को लेते हुए कहा, तुम क्या कर रहे थे? इस तरीके से कोई बच्चे को पकड़कर झुलाता है? ये तुम्हारे हाथ हैं, कोई झूला नहीं, लेकिन तुम बच्चों को ऐसे ऊपर लेकर इतनी तेजी से नीचे लेकर जा रहे हो। इस तरीके से कैसे झुला सकते हो तुम इतने छोटे से बच्चे को? वैसे तो तुम बड़े केयरिंग बनते हो, मुझे बड़ी बड़ी बातें सुनाते हो कि मुझे बच्चों का डायपर चेंज करना नहीं आता, मुझे बच्चों के कपड़े चेंज करने नहीं आते, और अब खुद देखो, तुम खुद ही उसे इस तरह झुला रहे हो। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? जैसे ही रौनक ने अपने शब्दों में इस तरह से आहान को डांटा, आहान बेचारा मुंह बनाकर बोला था, यार उस वक्त तो तुम साथ होती थी, तुम संभाल लेती थी, लेकिन अकेले सच में बच्चे संभालना कोई मामूली बात नहीं है। सच में हैट्स ऑफ टू यू, तुम बच्चे आसानी से संभाल लेती हो। तुम्हारे सामने तो बच्चे को संभालना बहुत ज्यादा इजी लगता है, लेकिन तुम्हारे पीछे इट्स इम्पॉसिबल, बच्चे को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
ये सुनकर रौनक अभी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तुरंत ही राधिका और वंशिका जाकर दोनों तरफ से उसे पकड़ लिया और बोली, शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। वैसे भी उस वक्त वहां पर सभी लोग उन्हें देख रहे थे। अब आहान बेचारगी से बोला था, सॉरी हवा हवाई, मैं आगे से ये बात कभी भी नहीं बोलूंगा कि तुमसे बेहतर बच्चा मैं संभाल लेता हूँ। सॉरी सॉरी, मुझे पता है, इसीलिए तो मुझे इसी बात का एहसास दिलाने के लिए घर छोड़कर नानी माँ से मिलने गई थी। वैसे भी आप लोग नानी माँ को साथ में लेकर क्यों नहीं आईं? अब रौनक ने हड़बड़ाकर सारी लड़कियों को देखा और राधिका बात संभालते हुए बोली, अरे आहान भाई, अभी नानी माँ कुछ दिनों तक और अपने बेटे बहू के साथ रहना चाहती हैं। अब उनका मन और वहाँ रुकने का था, तो हमने भी उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया। ये बोलकर राधिका गहरी सांस लेने लगी थी। वहीं तब तक आस्था ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जाकर अपने बेटे को गोद में उठाकर कसकर गली से लगा लिया था। आस्था का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। किसी अनजान आदमी से मिलकर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपने पति को बहुत बड़ा धोखा दे रही हो। उसे किसी से इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए था। अंश को गले से लगाकर वो खुद को इस बात का यकीन दिलाना चाहती थी कि जो कुछ भी अंश की माँ ने किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति और अपने परिवार को वापस से खुशहाल करने के लिए किया था। कहीं ना कहीं वो सोचकर खुद को तसल्ली देना चाहती थी। काफी देर तक आस्था अंश को सीने से लगाए खड़ी रही थी। अंश अपने प्यारे प्यारे हाथों से कभी अपनी मम्मा के गालों को छू रहा था, तो कभी उसके बालों को सहला रहा था, और कभी कभी अपनी छोटी सी तोतली आवाज में हंस भी रहा था। उसे ऐसा करते देखकर आस्था के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, और अगले ही पल उसे भी अपना दिल हल्का फुल्का सा महसूस हुआ था।